अर्पण रेडियो द्वारा प्रस्तुत है टॉक चीट विद अरुण सीजन वन में सुनिए देश के अलग अलग शहरों के रंगमंच कलाकारों के साथ रंगमंच से जुड़े विभिन्न विषयों पर सामूहिक बातचीत।
नमस्कार, सलाम, जय जोहार। अर्पा रेडियो के कार्यक्रम टॉक चित विद अरुण सीजन वन में मैं अरुण भांगे आप सभी रंगकर्मियों और श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज इस टॉक चित में हमारे साथ शामिल हैं
भोपाल मध्य प्रदेश से तानाजी वावड़े, आपका स्वागत है।
नमस्कार सभी श्रोताओं को।
और हमारे साथ जुड़ी हुई है सिग्मा उपाध्याय जी जो रायपुर से हैं।
नमस्ते आप सभी को,
आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं शिवांगी मुदलियार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, आपका भी स्वागत है शिवांगी।
हम अपनी टॉकची शुरू करें इससे पहले हम आप सभी को कार्यक्रम में शामिल रंगकर्मियों का परिचय दे दें।
सबसे पहले हमारे साथ हैं तानाजी वावड़े जो मूलतः भोपाल से हैं। 1992 से ये बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपनी रंग यात्रा प्रारंभ की। ये एक कुशल अभिनेता हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं, प्रकाश परिकल्पक हैं। देश भर के बहुत से राष्ट्रीय स्तर के निर्देशक, ख्यातिनाम निर्देशक, इनके साथ इन्होंने बहुत सारा काम किया है। बच्चों के साथ ये लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए कार्यशालाएं कर रहे हैं, उनके साथ में नाटक कर रहे हैं। 100 से ज्यादा इन्होंने नुक्कड़ नाटक किए हुए हैं। इनको इफ्तिकार युवा अभिनय सम्मान मिला हुआ है, यंग थिएटर सम्मान, विकुल कुमार सम्मान, कृष्ण दामू सम्मान, ये सारे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है तानाजी।
धन्यवाद धन्यवाद।
और हमारे साथ में है सिग्मा उपाध्याय जो मूलतः भिलाई से है, अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में है। वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से रंगमंच का इन्होंने प्रशिक्षण लिया है, साथ ही पत्रकारिता का भी इन्होंने विधिवत अध्ययन किया है। हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, भीली, बंगाली सारी भाषाओं की जानकार हैं। बंगाली के अलावा बाकी सारी भाषाओं में इन्होंने नाटक लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। बाल्यकाल से अब तक लगातार रंगमंच कर रही और हम दुआ करते हैं कि ये आगे लगातार रंगमंच करती रहें। आपका भी स्वागत है सिग्मा जी।
शुक्रिया अरुण भाई, बहुत शुक्रिया।
और हमारे साथ में है शिवांगी मुदलियार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, ये गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। फिलहाल ये नेट की तैयारी कर रही हैं। अपने कॉलेज में ही इन्होंने नाटक की शुरुआत की, जहां उन्होंने बहुत से नाटक किए, स्किट किए, नुक्कड़ नाटक किए और वर्तमान में अग्रज नाट्य दल बिलासपुर के साथ में जुड़ी हुई है। और मंच के साथ ही ये मंच के पीछे की सारी गतिविधियों में लगातार सक्रिय है। शिवांगी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू अरुण भैया।
रंग कर्मियों के परिचय के बाद चलिए मैं आपको आज की टॉकचीत का टॉपिक बता दूं। तो आज की टॉकचीत का टॉपिक है
जो रंगमंच में लड़कियां आ रही हैं, पहले की अपेक्षा अब लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बड़ा बदलाव है। ये कैसे संभव हुआ और जो रंगमंच में लड़कियां आ रही हैं तो रंगमंच के माध्यम से उनके लिए किस तरह के रास्ते खुल रहे हैं, आगे उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? मैं चाहूंगा कि शिवांगी इस पर क्या सोचती हैं वो प्लीज हमारे साथ शेयर करें।
मैं खुद थिएटर से लगभग 6 साल से जुड़ी हुई हूँ
जी।
जितना मेरा अनुभव रहा है, मुझे ऐसा लगता है एक लड़की होने के नाते थिएटर के लिए या थिएटर से जुड़े कामों के लिए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा लड़की होना उस चीजों में मतलब कोई बाधा उत्पन्न कर रहा हो या मेरे लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम रहा हो। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतनी रहती थी कि जब मैं प्रैक्टिस से घर देर से पहुंचती थी, प्रॉब्लम बस वहां होता था। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आज के समय में लड़कियों को थिएटर करने में कोई प्रॉब्लम होती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये समझती हूँ कि जो सोच का एक दायरा है आज के समय में लोगों का लड़कियों को लेकर, उनकी हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर, वो बहुत ही ज्यादा ओपन अप हो चुके हैं आज के समय में लोग और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन आज के समय में एक वो है। और दूसरा, आपने बोला कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो उसमें ये है कि हम सब जानते हैं कि आप किसी भी कला से जुड़े हों, चाहे वो नाटक हो, नृत्य हो या आप गायन करते हो, अगर आप कला से जुड़े हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी में दिखने लग जाती है, क्योंकि आप जो रूटीन फॉलो करते हैं, जिस डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वो डिसिप्लिन जो रहता है वो आपके डेली लाइफ में दिखने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कला से जुड़ने के बाद एक ओवरऑल डेवलपमेंट मैंने अपने अंदर फील किया है, और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जब इस कला से जुड़ता है तो उसे यही चीजें फील होती होंगी।
जी जी, तो आपका कहने का मतलब है कि हम थिएटर कर रहे हैं अगर, तो आगे फिर किसी भी फील्ड में जाए तो ये हमको सपोर्ट करेगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल अरुण भैया, क्योंकि जब आप एक थिएटर में रहते हैं तो आप सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते हैं, आप जब एक थिएटर में जाते हैं तो पहले आप 10 लोगों से मिलते हैं, 10 तरीके के सोच, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग है, और उन चीजों को सुनना, रोज उनके साथ उठना बैठना, बात करना, फिर वो जो एक प्रैक्टिस होती है थिएटर में, वो आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस लाती है, क्योंकि आप हर एक एक्टिविटी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। वो आपको एकदम से रियलाइज नहीं होता, पर जब आप उस प्रोसेस के थ्रू जाते रहते हैं ना, तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लग जाते हैं। हर चीज को सोचने समझने का एक अलग ही परसेप्शन आपके अंदर डेवलप होने लग जाता है।
जी, शिवांगी का कहना है कि लोगों की सोच बदली है, और इस सोच बदलने से लोग जुड़ पा रहे हैं बेहतर, लड़कियां भी थिएटर में आ पा रही है, उनको भी मौके मिल पा रहे हैं। इसके बाद में ताना भी आए हैं भोपाल से। ताना जी वावड़े, ये अपनी बात रखे, ये बदलाव किस तरह से आया, क्योंकि ये भी काफी सालों से थिएटर कर रहे हैं, इस समय भी बल्कि बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं था लड़कियों का, अब का जो दौर चल रहा है वो पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, लड़कियां भी आ रही हैं थिएटर से जुड़ रही हैं और काम कर रही हैं। ताना भी आप बताइए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ और आगे इनके लिए क्या संभावनाएं बनती हैं आपके हिसाब से?
संभावनाएं क्या बनती हैं, कैसे बनती हैं, ये तो भविष्य ही तय करेगा, आज का परिवेश देख के हम जैसे कि ये सच है कि पहले लड़कियां काफी कम थी इस फील्ड में, मगर धन्यवाद उन सीनियर्स का, उन अभिनेत्रियों का, जिनकी वजह से उनको देखकर दूसरी लड़कियां प्रोत्साहित हुई, उनको देखकर इस फील्ड में आई कि जब ये आ सकती तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो उस दौर के जितने भी सीनियर, जितने भी महिलाएं हैं, बहुत सारी नहीं है, जैसे भोपाल में तो मैं एक सरोज शर्मा जी को जानता हूँ जो बहुत काफी सीनियर है, जो रंगमंडल जब बना था भारत भवन
जी,
उसको ज्वाइन करने वाली पहली महिला थी वो। उस समय वो ग्वालियर से अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी, तो उनका जो योगदान भोपाल थिएटर में, बिजी नहीं पूरे थिएटर में, कि वो जब वो सुंदर भी बहुत थी दिखने में, और अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में आके सिर्फ नाटक करना, किसी संस्था के साथ में काम करना, बड़ी समय तो शायद 82-81 में तो लड़कियों का निकलना ही बहुत मुश्किल होता था, उस समय उन्होंने वो हिम्मत दिखाई, उनके घर वालों ने जो हिम्मत दिखाई, जिसकी वजह से वो आज तक काम कर पा रहे हैं। तो केवल उन्होंने अपने लिए ही काम नहीं किया, मुझे लगता है कि उनको देखकर कितनी सारी चाहे मध्य प्रदेश की रंगमंडल में रही है तो कहाँ उनके शोज होते थे, ऐसी सारी जितनी थिएटर की बड़ी बड़ी महिलाएं हैं उनका काफी योगदान है इसमें, कि जिसकी वजह से दूसरी लड़कियां आ पाई। अब यह है कि आज के समय में जो बदलाव आया है, मुझे इंटरनेट, टीवी, वेब सीरीज, ये जो सारी चीजें आई, इसकी वजह से शायद लड़के लड़कियों का थिएटर के प्रति ज्यादा रुझान बढ़ा है, क्योंकि आप दिल्ली बंबई कहीं पर भी जाते हैं, काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है आजकल किस इंस्टीट्यूट से, थिएटर कहीं सीखा, थिएटर किया, तो उनके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करती है कि अच्छा, कि थिएटर करना जरूरी है। मतलब बदलाव शायद मुझे लगता है मेरे हिसाब से थिएटर और फिल्म और इसमें सीरियल की वजह से थोड़ा सा ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए करने की उनको।
तो आपके हिसाब से मैं जो आपकी बातें समझ पाया हूँ, उसमें जो हमारी सीनियर महिला कलाकार रही हैं, या आजकल का जो टीवी सीरियल्स या फिल्मों का या वेब सीरीज का जो ग्लैमर है, ये सब कारण रहे कि आज ज्यादा लड़कियां या
घर वाले आपसे
जुड़ पा रही
हैं। घर वाले अगर आपसे पूछे कि भाई आप अपना जीवन कैसे चलाओगे,
जी,
तो उनके पास में बताने के लिए आज के दौर में उनको खुद पता है कि नहीं यार, इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो कम से कम ये खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती और अपना जीवन चला सकती है।
जी जी जी, तो इसके बाद मैं सिग्मा जी से जुड़ूंगा। सिग्मा जी अभी रायपुर में है, मूलतः वो भिलाई की है। तो सिग्मा जी, आपने शिवांगी की बात सुनी, शिवांगी ने जैसा बोला सोच में बदलाव आ रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन पा रही है और माहौल थोड़ा सा बेहतर हो पा रहा है तो लोग जुड़ रहे हैं। ताना जी ने बोला कि सीनियर महिलाएं हैं, उन्होंने उतना बेहतर माहौल बनाया और उनका जो काम था या काम करने का तरीका था उसको देखकर बहुत सारी लड़कियां जुड़ी या महिलाएं जुड़ी, या ग्लैमर भी है इसका अपना, उसके कारण भी लोग जुड़े। इन सारी बातों के साथ में, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, आप खुद बहुत सारा काम कर रही हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ में काम कर रही हैं, अलग अलग ग्रुप्स में काम कर रही हैं, अलग अलग लोगों के साथ में काम कर रही हैं, आप क्या देख रही हैं, क्या समझ रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव आया है वो आपने खुद फील किया होगा, तो आपकी क्या राय है और आगे किस तरह के रास्ते हैं, किस तरह की संभावना है, आप क्या कहते हैं?
बिल्कुल अरुण भाई, शिवांगी ने बिल्कुल सही कहा, माहौल तो बदला है, लेकिन यदि हम बिल्कुल शुरू से देखें तो रंगमंच में महिलाओं की जो स्थिति रही है शुरुआत के कालों में, उस पर एक बहुत ही खूबसूरत नाटक है नटी बिनोदिनी।
नटी बिनोदिनी जी
जी, तो मैं सभी श्रोताओं से ये आग्रह करूंगी कि एक बार यदि स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश और स्वतंत्रता के एहसास को लेकर यदि वो सच में बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस संघर्ष को जानना चाहते हैं, तो वे एक बार नटी बिनोदिनी जरूर पढ़ें, या मौका हो तो कहीं उसके शोज हो रहे हो नाटक के तो उसे देख के लें। और पहले बाल गंधर्व थे, वो स्त्री चरित्र निभाते थे नाटकों में, तो वो जो करते थे वो फैशन बन जाता था। धीरे 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 जब लगा कि बाल गंधर्व जब स्त्री बनकर ही एक ग्लैमर लग रहे हैं नाटकों की दुनिया में, तो क्यों ना असल स्त्रियों को भी लाया जाए। तो इसके लिए उस समय वेश्याओं का चयन किया जाता था नाटकों में काम करने के लिए।
जी जी,
उनको उनके बाद हमारी जो हमसे जो बड़ी वाली पीढ़ी है, हमारी माँ की, हमारी दादी की, उन महिलाओं का संघर्ष बहुत काबिले तारीफ है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। क्योंकि यदि आप कहें कि हमें सार्वजनिक जीवन में उतरना है उस जमाने में, स्टेज में जाके अभिनय करना है या नृत्य करना है, तो सबसे पहले लोग आपको टेढ़ी निगाहों से देखा करते थे, आपको सबके सामने प्रूव करना पड़ता था कि नहीं मैं इस कार्य में अच्छी हूँ। तो तान्हा जी ने बिल्कुल सही कहा कि उन महिलाओं को, हमारे पुरखों को, हमें तो उन्हें पुरखा कहना चाहिए कि हम उन्हें नमन करें कि उनके वजह से मुझे या मेरी पीढ़ी की महिलाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई।
जी,
मेरे घर में तो पहले से ही माहौल था रंगमंच का, तो मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि स्त्रियों को कोई दिक्कत भी होती होगी। लेकिन जब मैं अपने आसपास काम करने वाली लड़कियों से मिली जो साथ में हमारे साथ नाटक करती थी, उनकी बातें सुनी, क्योंकि हम नाटक करते तो हम सिर्फ नाटक नहीं करते हैं, नाटक करने का अर्थ होता है कि जीवन को लेके हमारा दृष्टिकोण बने
जी।
हम थोड़ा और संवेदनशील इंसान बने, तो उसी बीच हमारी बातचीत जो होती थी उसमें अभी भी आज की तारीख में भी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने घर में या तो कुछ बहाने बनाकर आती हैं या तो बताती नहीं है, और बताती भी हैं तो बहुत हंगामा होता है फिर भी वो आती हैं। तो आज भी ऐसी लड़कियां हैं, और ऐसी लड़कियों को भी हमें बिल्कुल साधुवाद देना होगा कि वे प्रयास जारी रख रही हैं।
हाँ बिल्कुल, और आगे क्या संभावनाएं हैं इन सारी चीजों के बीच में?
संभावनाओं की बात करें अरुण भाई, तो ऐसा है कि नाटक की दुनिया बहुत बड़ी है और ये हर रोज बदलती है
जी,
है ना, तो हमें उस हिसाब से हमें भी बदलना होगा। हमें जो पुराने सवाल हैं या उनपे विमर्श जरूर करें हम, लेकिन हम मेरे ख्याल से स्त्री पुरुष में जब भेद होना बंद हो गया है, हम नाटकों में काम करते हैं हम लोग तो बिल्कुल भेद नहीं करते कि तुम लड़की हो तुम ये फर्नीचर नहीं उठाओगी, तुम लड़की हो तुम ऊपर चढ़ने का लाइट लगाने का काम नहीं करोगी, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अपन जहाँ स्पेस में हम काम भी करते हैं वहां पे भी हमें यह माहौल बनाना चाहिए कि हर कोई हर काम करे। तुम लड़की हो इसलिए लड़कियों से ये काम नहीं करवाना है, लड़की हो इसलिए उसको थोड़ा प्रिविलेज देना है काम के मामले में, तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्थितियां बेहतर होंगी, ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग से ये सब बातें जाएंगी कि लड़का लड़की में अंतर होता है और लड़कियां अभी भी संघर्षरत है। संघर्ष है, जरूर है, मैं मानती हूँ संघर्ष है, लेकिन हमें अपने काम करने के तरीके से, हमें अपने खुद की कार्यशैली से उन चीजों को बदलना होगा। हम बात करके या कह के एक विमर्श जरूर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हम बदल तभी सकते हैं जब हम काम करें।
हमको वो रवैया अपनाना पड़ेगा तभी कुछ
बिल्कुल
हो
बिल्कुल
पाए।
जी, बिल्कुल जी, हमें भेदभाव मिटाने के लिए बात कम करनी होगी, काम ज्यादा करना होगा, सीधी बात।
बहुत बढ़िया, इन सब बातों के साथ में पूरा माहौल है वो माहौल बदला है और माहौल बेहतर हुआ है, और हमको बेहतर काम करते रहना पड़ेगा, और जो हमारे सीनियर जो करके गए उनसे हमको सीखना पड़ेगा, और खुद को अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट हमेशा रखना पड़ेगा। इन सारी बातों के साथ में मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए इस विषय को लेकर या रंगमंच को लेकर आप कुछ बात कहना चाहें। पहले प्लीज ताना भैया, आप अगर अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, रंगमंच को लेकर कोई आप बात रखना चाहें तो जरूर।
रंगमंच को लेकर संदेश जैसी तो कोई बात नहीं, हाँ अपने
अपनी बात आप कोई
जरूर कर सकता हूँ कि हाँ भाई, जो भी इस फील्ड में आता है तो ईमानदारी, शिद्दत, ये सारी चीजें तो आपको चाहिए चाहिए। आप अपने खुद आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी भेज रहे हैं, तो समय दीजिए उनको, उनसे बहुत अपेक्षाएं मत रखिए, क्योंकि आर्ट फील्ड में, किसी भी फील्ड में आदमी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रखता है कि जल्दी से ये कर ले, जल्दी से ये काम कर ले, जल्दी से ऐसा कर ले, जल्दी से, तो जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे लगता है कुछ ही लोगों की किस्मत होती है कि जल्दी जल्दी उनको सारी चीजें मिल जाती हैं। सबकी किस्मत शायद ऐसी नहीं होती, मगर ये जरूर है कि सबकी मेहनत रंग जरूर लाती है। आप अगर मेहनत करते रहेंगे, काम करते रहेंगे ईमानदारी से, तो आज नहीं कल नहीं, आप जो भी मकान आपने सोचा है जीवन में, वो आपको जरूर मिलेगा। बस आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।
तो हमको धैर्य जरूरी है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, हम जो चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। तो इस बात के
किसी भी फील्ड में, चाहे वो किसी भी फील्ड में,
हम कुछ भी करना चाहें जीवन में, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा सब्र तो रखना ही पड़ेगा, धैर्य रखना ही पड़ेगा। हाँ शिवांगी, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं सभी श्रोताओं से बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि मेरा अनुरोध है ये कि आप जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, हर एक घर से अगर एक व्यक्ति भी इस कला से जुड़ता है, और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि हर किसी को अपने घर से एक एक बच्चे को थिएटर जरूर ज्वाइन कराना चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा इस प्रैक्टिस में आता है, चीजों को सीखता है, भले उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो या ना हो, पर वो एक्सपीरियंस से जो चीजें गेन करता है, यकीन मानिए लाइफ में उसे आगे वो चीजें जरूर काम आएंगी। जैसा सिग्मा मैम ने कहा कि संवेदनशीलता, ये टर्म मैम ने यूज किया, तो बिल्कुल आप एक अच्छे इंसान ही बनकर निकलेंगे बाहर। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है भैया सबसे कि सब थिएटर ज्वाइन करें, जितना ज्यादा वो सीख सकते हैं उतना सीखें, और निरंतरता रखेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, तो जरूर यहाँ से उनको बहुत कुछ मिलेगा, और जो उन्हें मिलेगा वो सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को दे पाएंगे।
ये बड़ी बात है शिवांगी की, थिएटर से जुड़ने से अपने आप में बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं, हम एक अच्छा इंसान बन पाते हैं और सोसाइटी को भी बहुत कुछ दे पाते हैं। हम चलते हैं सिग्मा जी के पास। सिग्मा जी, आपकी कोई बात जो हमारे अर्पा कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं तक आप पहुंचाना चाहते हैं?
अरुण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस विमर्श में आमंत्रित किया, इतना बात रखने का मौका दिया। तो मेरा बस यही कहना है कि जो रंगमंच है वो सिर्फ हाँ हाँ नहीं कर सकता, रंगमंच को प्रश्न भी करना चाहिए और अभियोग भी लगाने चाहिए, और हमेशा से एक सामाजिक सरोकार का माध्यम रहा है। तो जो आज से 10 साल पहले जो सामाजिक सरोकार थे, आज के समय में वो बदल गए हैं, तो रंगमंच को भी अपने हिसाब से बदलना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए
जी।
और जहां तक बात होती है कि रंगमंच से पैसे नहीं है, तो हाँ, यदि आप अनुदान ग्रांट के झमेले में अगर पड़े रहेंगे तो जी हाँ, बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन यदि आप देश के वित्त राजधानी में जाएं मुंबई, तो वहां आप देखेंगे कि वहां एक बहुत बढ़िया इंडियन थिएटर इंडस्ट्री खड़ी है, जहां लोग आपस में बैठ के एक दूसरे के नाटकों के बारे में बात भी करते हैं, नाटकों से सच में पैसे कमाते हैं
जी।
ये कोई मतलब ऐसा, और सिर्फ नाटक नहीं करते, वो नाटक को अन्य माध्यमों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को लगातार अपडेट करते रहें। रंगमंच हमेशा से, जब सिनेमा आया बहुत साल पहले, तो भी सर्वाइव कर गया था और अभी भी सर्वाइव कर रहा है। बस जरूरत है कि हमारी पॉजिटिविटी की, कि हम कितने पॉजिटिव तरीके से हम अपनी चीजों को लेते हैं।
जी जी जी, आपने जैसे बोला कि सवाल करते रहना बहुत जरूरी है, अपनी बात रखना बहुत जरूरी है, और इसका एक सशक्त माध्यम है रंगमंच। हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, और हम लगातार करते रहें। माहौल बदला है, आगे भी और माहौल बदलेगा, और हम आप सब मिलकर कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अभी रंगमंच कर रहे हैं, ये जो माहौल है, ये सारे ग्रुप की जिम्मेदारी है, ग्रुप के एक एक सदस्य की जिम्मेदारी है कि ये जो माहौल है, ये जो दौर है, उसको वो पॉजिटिव बना कर रखे, उस माहौल को इतना अच्छा बना के रखे, खूबसूरत बना के रखे, उससे जो भी चाहे उतनी ही आसानी से जुड़ पाए और उतनी ही आसानी से घुल मिल पाए और काम कर पाए। थिएटर से सारे लोग जुड़े, थिएटर आपको कुछ ना कुछ देगा ही जो आपके जीवन में और सारे समाज के काम आएगा।
इस बात के साथ आज हम अपनी टॉकचीत को यहीं विराम देते हैं, अगली टॉकचीत तक। मैं अरुण भांगे अरपा रेडियो की तरफ से आप सभी श्रोताओं और रंगकर्मी साथियों का धन्यवाद करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।